हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आपके जैसे पत्थर दिल, बेदर्द, बेरहम इंसान से मैंने रहम और दया की उम्मीद की, ये मेरी ही गलती थी। धृति ने दर्द भरी आँच छोड़ी और मन मारकर वापस काम में लग गई, पर उससे काम किया नहीं जा रहा था। यूं ही घंटा भर बीत गया। फिर धृति बाथरूम में चली गई, पर बाहर नहीं आई। अर्णव बार बार नजरें बाथरूम की तरफ घुमाता और समय देखता रहा। वक्त बीतता जा रहा था। देखते देखते धृति को अंदर गए 2 घंटे बीत गए, पर वो बाहर नहीं आई। पहले तो अर्णव इस बात को नज़रअंदाज करता रहा, फिर जब 2 घंटे बीत गए पर धृति बाहर नहीं आई तो अर्णव की भौहें एक साथ आ गईं और वो उठकर बाथरूम की तरफ चला आया। कुछ पल वो बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर गेट नॉक करते हुए धृति को आवाज़ लगाने लगा। धृति, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से अंदर? बाहर आओ, मुझे वॉशरूम जाना है।
मैं नहीं आऊँगी बाहर, आप कहीं और चले जाइए।
अंदर से धृति की भारी आवाज़ आई, जैसे वो रो रही हो। उसका जवाब सुनकर अर्णव चौंक गया और हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला, ये क्या बकवास हुई, क्यों नहीं आओगी तुम बाहर? चुपचाप बाहर आओ, ज्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर धृति वॉश बेसिन के पास खड़ी थी। उसने स्लाब का सहारा लिया हुआ था, एक हाथ से पेट को दबाया हुआ था और आँखें आंसुओं से लबालब भरी थीं। अर्णव की बात सुनकर उसने रोंधे स्वर में कहा, आपको मुझसे जुड़ी हर बात नाटक ही क्यों लगती है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती? क्या इतनी नफ़रत है आपको मुझसे कि आपको कभी मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ नज़र ही नहीं आती? क्या इतने वक्त तक मुझे दर्द देकर, तड़पाकर भी आपकी नफ़रत कम नहीं हुई है? क्यों आप मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं? क्या आपको कभी मुझ पर तरस नहीं आता? धृति के शब्दों में उसका दर्द झलक रहा था। अर्णव उसके सवाल सुनकर कुछ पल मौन रह गया, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, धृति, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से दरवाज़ा बंद करके? इस बार उसकी आवाज़ में हल्की नरमी झलक रही थी। उसकी बात सुनकर धृति ने अंदर सुबकते हुए कहा, मैं नहीं आऊँगी बाहर, मैंने कहा था मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर जाने दीजिए, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, पर आपको ना तो मेरी बात सुनाई दी और ना ही मेरी परेशानी दिखाई दी, आपको बस अपना गुस्सा और नफ़रत दिखाई देती है, आप बस मुझे तकलीफ़ देते रहते हैं, मेरे इतना इंसिस्ट करने पर भी आपने मुझे जाने नहीं दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, कोई परेशानी भी हो सकती है मुझे, सब बातें क्या मैं आपको बता दूँगी, इतना दर्द हो रहा है मुझे, पर आपको नहीं आया, आपने मुझे जाने नहीं दिया, आपकी वजह से मेरे कपड़े कंधे हो गए और अब आप मुझे बाहर आने को कह रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी बाहर। धृति ने फ्लो फ्लो में सब कह दिया, पर उसे खुद को भी एहसास नहीं था कि भावुकतावश वो क्या कुछ कह गई। पूरी बात कहकर वो सुबकने लगी। बाहर खड़े अर्णव ने जब उसकी बात सुनी तो स्तब्ध रह गया। अब जाकर उसे सारी बात समझ आ रही थी और साथ ही अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। अपना गुस्सा दिखाने और नफरत निभाने के चक्कर में वो ये तक भूल गया था कि धृति एक लड़की है और उसे कुछ परेशानियां होती होंगी जो वो उसे नहीं बता सकती। अर्णव कुछ पल शॉक्ड सा खड़ा सब बातों के बारे में सोचता रहा, फिर उसने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और सॉफ्टली बोला, अगर तुम्हें ये परेशानी थी तो मुझे बता सकती थी, और लड़कियां तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास इमरजेंसी कोटा रखती हैं। अर्णव की बात सुनकर धृति ने एक बार फिर सिसकते हुए कहा, आपके वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा, हमेशा बेताल जैसे मेरे सर पर सवार रहते हैं मुझे, चैन से एक दिन भी जीने नहीं देते मुझे, इतनी परेशानियों के बीच मेरे दिमाग से निकल गया, और बताने की बात तो आप कीजिए ही मत, बहुत अच्छा रिश्ता है ना हमारा, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, कितनी परवाह करते हैं मेरी, इसलिए मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगी। हमेशा शांत रहने वाली धृति आज अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी, पर किस हक से ये वो नहीं जानती थी, बस गुस्सा आ रहा था उसे और वो गुस्सा वो बाहर निकाल रही थी बिना इस बात की परवाह किए कि सामने मौजूद शख्स को तो उसकी नाराज़गी और गुस्से से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अर्णव ने जब धृति की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अगले ही पल उसने खींचते हुए कहा, तुम्हारी बकवास बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बकवास बंद करो अपनी और दरवाज़ा खोलो। धृति को भी अब गुस्सा आ गया। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए गुस्से से कहा, नहीं आऊंगी मैं बाहर, जो करना है कर लीजिए। धृति की जिद देखकर अब अर्णव बुरी तरह चिढ़ गया था। उसने हल्के गुस्से में कहा, धृति, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं खोलूंगी, धृति ने उसी रहस्य में जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्णव एकदम से भड़क उठा, पर अपने गुस्से को दबाते हुए कठोर लहजे में बोला,
धृति, बाथरूम में बंद होने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और दरवाजा खोलो। अगर अब भी तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं बाहर से दरवाजा लॉक कर दूंगा, फिर बंद रहना सारा दिन अंदर। अर्नव की धमकी सुनकर धृति घबरा गई। ऐसी स्थिति में वो सारा दिन अंदर बंद होकर नहीं रह सकती थी। आखिर में उसे झुकना ही पड़ा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। अर्नव ने नजरें घुमाई पर अंदर धृति कहीं नजर नहीं आई, पर दरवाजे के साइड में उसका दुपट्टा लहराते हुए देख गया। मतलब वो दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी थी। अर्नव ने उसकी बांह पकड़कर उसे सामने कर दिया। उसके पतले से व्हाइट सूट और व्हाइट लेगी पर लगा ब्लड स्टेन दिख रहा था। धृति खुद में सिमट गई और शर्मिंदगी से सर झुकाकर वापस दरवाजे के पीछे छिप गई। अर्नव को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अपनी नफरत में उसे धृति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसने गहरी सांस छोड़ी और बाहर से अपना ब्लेजर लेकर आ गया। उसने धृति के पास आकर पीछे हाथ घुसाया और ब्लेजर को उसकी कमर पर बांध दिया। चलो घर, धृति के कानों में अर्नव की सॉफ्ट सी आवाज़ पड़ी। तब जाकर उसने पलके उठाकर आंसुओं से भीगी निगाहों से उसे देखा और इनकार में सर हिलाते हुए रूंधे स्वर में बोली, नहीं, जब मैंने कहा तो आपने जाने नहीं दिया। अब ऐसी हालत में मैं बाहर किसी के सामने नहीं जाऊंगी। धृति ने वापस अपनी निगाहें झुका ली। अर्नव कुछ पल खामोशी से धृति के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे धृति को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके अचानक ऐसा करने से धृति हड़बड़ा गई और उसे देखकर घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे। अर्नव, जिसकी नजरें सामने टिकी थीं, उसने बाथरूम से बाहर की ओर कदम बढ़ाते हुए गंभीरता से कहा, चुपचाप बैठी रहो और जो कर रहा हूँ वो करने दो। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो ऐसे ही सबके सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। अर्नव की धमकी के बाद धृति ने डर के मारे अपना मुंह नहीं खोला, निगाहें झुकाए उसके बाहों में कैद रही। अर्नव उसे अपनी बाहों में उठाए कैबिन से बाहर निकल गया और किसी की परवाह न करते हुए सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जिसकी भी नज़र उन पर पड़ी, सब आंखें फाड़े और मुंह खोले उन्हें देखते ही रह गए। अर्नव धृति को अपनी बाहों में उठाए पार्किंग एरिया में पहुंच गया, फिर उसे अपनी कार के पास खड़ा करते हुए बोला, अंदर बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, आपकी कार गंदी हो जाएगी, धृति ने हड़बड़ा हड़बड़ा कर कहा। और जैसे ही कार से दूर हटने लगी, अर्नव ने दरवाज़ा खोला और उसकी बाँह पकड़कर उसे अंदर बिठाते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरी कार है ना, तो उसकी गंदी होने या साफ होने की चिंता मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना तुम्हें कहा जा रहा है। अर्नव ने अपनी बात पूरी करते हुए धृति की सीट बेल्ट भी लगा दी, फिर चेतावनी भरी नजरों से उसे देखते हुए दरवाजा बंद कर दिया। धृति कुछ कह न सकी और सिमट कर बैठ गई। अर्नव ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी फुल स्पीड में घर की तरफ बढ़ा दी।
धृति अनकंफर्टेबल सी बैठी, अपने पेट को हल्की हल्के से दबाती रही। कार विला के पोर्च में जाकर रुकी। अर्नव बाहर निकला और दूसरे तरफ का दरवाजा खोलकर धृति को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। हॉल में बैठी शीला और बाकी नौकरों की नज़र जब उन दोनों पर पड़ी तो उनकी आंखों की पुतलियां हैरानगी से फैल गईं। वे आंखें भाड़े और मुंह खोले उन्हें देखते ही रह गए। अर्नव ने सबको नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए और उसके कदम सीधे रूम में आकर रुके। उसने जैसे ही धृति को अपनी बाहों से नीचे उतारा, वो तुरंत अलमारी की तरफ दौड़ गई। अर्नव उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल गया। धृति बाथरूम में जाकर घुस गई। लगभग घंटे भर बाद वो बाथरूम से बाहर निकली। अपने कपड़े और अर्नव का कोट पूल साइड लगे क्लॉथ स्टैंड पर सुखाने के बाद वो कमरे में बाहर आई। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है, धृति ने सकुचाते हुए पूछा, कहीं अर्नव तो नहीं? उसके सवाल पर बाहर से शीला की आवाज आई, मैडम मैं हूँ। शीला की आवाज सुनकर धृति की जान में जान आई। उसने तुरंत ही उसे अंदर आने को कह दिया। दरवाजा खुला और शीला के साथ एक और सर्वेंट ने अंदर कदम रखा। उसके हाथ में हॉट वाटर बैग था। शीला ने इशारा किया तो वो उस बैग को बेड पर रखकर कमरे से बाहर चली गई। धृति आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रही थी। उस सर्वेंट के जाने के बाद शीला हाथ में ट्रे लिए धृति के पास चली आई और ट्रे उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैम ये सर ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि इससे आपको आराम मिलेगा, साथ ही सेकने के लिए हॉट वाटर बैग भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लीजिएगा।
धृति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये सब अर्णव ने उसके लिए कहा है। जो लड़का हमेशा बस नए नए तरीके ढूंढता है ताकि उसके लिए हालात और मुश्किल बना सके, उसे और तकलीफ पहुंचा सके, उसे और ज्यादा हर्ट कर सके, और आज उसकी परवाह कर रहा है, उसे आराम करने को कह रहा है। धृति को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने आंखें फाड़े शीला को देखा और अचंभित सी बोली, आपके सर ने ये कहा, मतलब उन्होंने मेरे लिए ये सब भेजा और आराम करने को कहा? शीला भी उसकी हैरानगी की वजह समझ रही थी। उसने हौले से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस मैम, सर ने कहा कि आपको काफी परेशानी और दर्द हो रहा है, तो आपको ये चाय पीनी चाहिए। इससे दर्द आराम होगा और सिकाई से भी दर्द में आराम मिलेगा, और उन्होंने ही कहा कि आपको आज आराम करना है। धृति को अब भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरान परेशान से उसे पीखे जा रही थी। उसके चेहरे के भावों को देखते हुए शीला ने आगे कहा, मैडम, जैसा सर का आपके साथ व्यवहार रहा है, आपका इस बात को सुनकर ऐसे रिएक्ट करना बिल्कुल ठीक है, पर असल में अभी आपने सर का बस एक साइड ही देखा है। हकीकत में सर ऐसे नहीं है जैसे वे आपके साथ बनकर रहते हैं। वे एक शांत और समझदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, अपनों के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं, खुद से जुड़े लोगों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत परवाह भी करते हैं। पता नहीं आपसे उन्हें क्या परेशानी है जो वे इतना रूखा व्यवहार करते हैं आपके साथ, जबकि हकीकत में वे ऐसे नहीं हैं। और आज आपके सामने उनका दूसरा साइड आया है, जो दूसरों का दर्द समझते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं और खुद से जुड़े लोगों का ख्याल रखते हैं। अर्णव के बारे में ये सब बातें सुनकर धृति सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई असली अर्णव वो नहीं जिसे उसने अब तक जाना है, जो बस कैसे भी करके उसे चोट पहुंचाना चाहता है, उसे हर्ट करता है, उसे जलील करने के मौके तलाश करता है, जिसे कभी उसका दर्द, उसकी तकलीफ नजर नहीं आती। अगर रियल अर्णव ये है जो इतनी दुश्मनी और नफरत के बावजूद उसका ख्याल रख रहा है, तो ऐसी कौन सी वजह है जिसने इस सॉफ्ट हार्टेड लड़के को पत्थर दिल राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया? अगर वो खुद से जुड़े लोगों से इतना ही प्यार करता है, उनकी इतनी ही परवाह करता है, तो उसके हिस्से सिर्फ उसकी बेरुखी, उसकी नफरत ही क्यों आ रही है? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है उसने कि अर्णव उस पर जरा तरस भी नहीं खाता? एक बार फिर धृति के सामने वही सवाल आ खड़ा हुआ जिसका जवाब वो ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी, पर अपने गुनाह को समझ नहीं सकी जिसकी सजा उसे मिल रही थी। धृति ने मायूसी से सर हिलाया और चाय का कप लेकर बेड पर आकर बैठ गई। चाय खत्म करके उसने बैग अपने पेट पर रख लिया और खुद को चादर से कवर करके लेट गई। एक बार फिर उसके दिमाग में शीला की बातें और अर्णव का अब तक का व्यवहार घूमने लगा। जाने कब उसकी आंखें लगीं, उसे खुद को इसका एहसास नहीं हुआ। दूसरे तरफ अर्णव वापस ऑफिस आ चुका था और इस वक्त अपने कैबिन के ग्लास वॉल के सामने खड़ा धृति के बारे में सोच रहा था। उसकी मासूमियत हर बार उसे एहसास करवाती थी कि जो इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं, जिस गुनाह की सज़ा उसे दी जा रही है, वो उस गुनाह को कभी कर ही नहीं सकती। वे इल्ज़ाम सच नहीं हो सकते, पर आंखों देखे को झुठलाना भी कहाँ आसान होता है। एक तरफ उसका दिल था जो धृति को गुनाहगार मानने से इनकार कर रहा था, तो दूसरी तरफ दिमाग था जो बहुत पहले उसे दोषी करार दे चुका था। अर्णव कुछ पल अपने दिल और दिमाग के बीच उलझा रहा, फिर आखिर में दिमाग की दलीलों के आगे दिल की आवाज़ दब कर रह गई और अर्णव के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। जल्द ही, क्या सच में धृति गलत है या अर्णव उसके साथ गलत कर रहा है? अर्णव का दिल सच कह रहा है या जो उसका दिमाग मान चुका है वही हकीकत है? क्या है आखिर हकीकत और क्यों इतनी नफरत करता है अर्णव उससे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ बेरहम इश्क।